नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त भी जारी की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, भारत एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के साथ आपसी संबंधों के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं करेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दोपहर 1 बजे तक 36.69% मतदान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया। अमेरिका और ब्रिटिश सैन्य बलों ने यमन में 1 दर्जन से अधिक हौजी के नियंत्रण वाले ठिकानों पर समन्वित हमले किए। और आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शारजाह में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से और इंग्लैंड का सामना बांग्लादेश से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के वाशिम से लगभग 23,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं कृषि और पशुपालन क्षेत्र से संबंधित हैं। श्री मोदी ने पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त भी जारी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश भर में 9,04,00,000 से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ मिला है।
पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहाँ के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90,00,000 से ज्यादा किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने बंजारा समुदाय के विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस 4 मंजिला संग्रहालय में 13 दीर्घाएं हैं और इसमें बंजारा आंदोलन के चित्रों के माध्यम से बंजारा विरासत को दर्शाया गया है। इस अवसर पर श्री मोदी ने बंजारा समुदाय के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। वाशिम पहुंचने के बाद श्री मोदी ने संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज के स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। संत सेवालाल और संत रामराव महाराज बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे। प्रधानमंत्री ने वाशिम से पोहरा देवी में जगदम्बा मंदिर में दर्शन और पूजा भी की।
एनडीए की केंद्र सरकार ने ही घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए कल्याण बोर्ड का गठन भी किया है। इस समाज के सांस्कृतिक पहचान को सही सम्मान मिले, इस दिशा में भी बीजेपी सरकार और एनडीए सरकारें लगातार काम कर रही है। विकास की गति तेज करने के लिए यहाँ राज्य सरकार ने संत सेवालाल महाराज बंजारा तांडा समृद्धि अभियान भी चलाया है।
महाराष्ट्र के एक दिन के दौरे के दौरान श्री मोदी आज शाम ठाणे में प्रमुख मेट्रो और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन की आगामी शिखर बैठक के दौरान भारत पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के बारे में चर्चा नहीं करेगा। नई दिल्ली में आज आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस द्वारा आयोजित शासन संबंधी सरदार पटेल व्याख्यान में भाग लेते हुए उन्होंने मीडिया से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने जोर देकर कहा कि शिखर बैठक में उनकी भागीदारी बहुपक्षीय संबंधों पर केंद्रित रहेगी।
I am scheduled to go to Pakistan, meeting of the SCO, SCO heads of government. It will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO.
डॉ जयशंकर ने कहा कि सार्क के मामले में प्रगति नहीं हो रही है क्योंकि हाल के वर्षों में बैठकें नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि इसका कारण एक सदस्य देश दूसरे देश के विरुद्ध सीमा पार आतंकवाद से संलिप्त है। कार्यक्रम के दौरान डॉ जयशंकर ने विवादों, विशेषकर जम्मू कश्मीर से संबंधित विवाद में संयुक्त राष्ट्र को शामिल करने के विरुद्ध सरदार पटेल के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यों से विदेशी ताकतों को पारिस्थिति में जोड़ तोड़ करने का अवसर मिल जाता है। विदेश मंत्री ने कहा कि किसी भी अन्य पड़ोसी की तरह भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन सीमा पर आतंकवाद की अनदेखी नहीं की जा सकती। सरदार पटेल के व्यवहारिक दृष्टिकोण का जिक्र करते हुए उन्होंने वास्तविकता के महत्व को भारत की विदेश नीति का आधार बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा विधानसभा के सभी 90 सीटों के एक ही चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 36.69% वोट डाले जा चुके हैं। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। 2,03,00,000 से अधिक मतदाता 1,031 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। और गुरुग्राम में मौजूद हमारी सहयोगी सुपर्णा से हम बात करते हैं। सुपर्णा, गुरुग्राम में चुनाव आयोग की तैयारियां, सुरक्षा इंतजाम कैसे हैं?
लवलीन, मैं इस वक्त सेक्टर 43 के डीपीएसजी स्कूल में हूँ। गुड़गांव जिले में 14,97,000 मतदाता हैं। इस जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र पटौदी, बादशाहपुर, सोना और गुड़गांव शामिल हैं। 41,000 युवा पहली बार के लिए वोट देंगे। जिले में 85 वर्ष से अधिक उम्र के 20,000 मतदाता भी हैं और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 12 स्टेटिक सर्वेलांस टीम्स और 20 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स मैदान में तैनात की गई है। जिला प्रशासन ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर सहायता प्रदान करने के लिए एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स को शामिल किया है। 200 से अधिक सेंसिटिव मतदान केंद्रों पर पुलिस, अर्धसैनिक बल और प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात किया गया है।
धन्यवाद सुपर्णा इस जानकारी के लिए। 2,03,00,000 से अधिक मतदाता 1,031 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य में कुल 20,632 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग सहित सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। और अब हम बात करते हैं अश्विनी कुमार से। अश्विनी, आप कौन से विधानसभा क्षेत्र में हैं और इस बार क्या नई विशेषता है वहाँ?
जी लवलीन, मैं अभी कालका विधानसभा क्षेत्र में हूँ। यहाँ अभी देखने में आया कि बहुत से लोग जो हैं 80 वर्ष से अधिक आ चुके हैं, वो भी मतदान के लिए मतदान केंद्र पर आ रहे हैं। और इसके अलावा दिव्यांगों में पहली बार मतदान के लिए आने वाले जो युवा लोग हैं उनमें बड़ा उत्साह देखा जा रहा है मतदान को लेकर। और जो बड़ी पहल की है वन विभाग ने वो है कि ग्रीन बूथ बनाए गए हैं, जहाँ मतदान के बाद आप अपनी उंगली की शाही दिखाते हैं और आपको पौधे दिए जाते हैं लगाने के लिए। और मतदाता ने भी इसका स्वागत किया है। उनका कहना है कि हम न केवल लोकतंत्र में योगदान दे रहे हैं अपना वोट डालकर, बल्कि हम पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान देंगे इस तरह से। तो लवलीन, ये एक अच्छी पहल
जी, एक बहुत अच्छा अभियान और पहल है। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बनने के लिए लोगों से रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने को कहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे राज्य के सभी युवा मतदाताओं को शुभकामनाएं दी हैं। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं अनुपम मिश्र। अनुपम, आप कहाँ मौजूद हैं और मैदान में कौन कौन से प्रमुख उम्मीदवार हैं उस निर्वाचन क्षेत्रों में, साथ ही मतदाताओं में कैसा उत्साह है?
जी लवलीन, हम अभी फरीदाबाद जिले के बड़खल विधानसभा क्षेत्र में हैं। मतदान शुरू हुए 7 घंटे से भी अधिक का समय हो चुका है, लेकिन लोगों में, विशेषकर युवा, पहली बार वोट कर रहे मतदाता, महिला और वरिष्ठ नागरिकों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। पिछली बार हरियाणा में 68% मतदान दर्ज हुआ था। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने आशा प्रकट की है कि इस बार लोग अपने पूर्व रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। फरीदाबाद में 1 बजे तक करीबन 32% मतदान हुआ है। लवलीन, अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ के वल्लभगढ़ से नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक शारदा राठौड़ निर्दलीय उम्मीदवार और पराग शर्मा कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। पड़ोस की पलवल जिले के होडल सीट से राज्य कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान लड़ रहे हैं। उनके सामने हैं भाजपा के हरेंद्र सिंह रामरतन और जेजेपी के सतवीर तंवर।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम इस जानकारी के लिए। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। रांची में संवाददाताओं से बातचीत में राज्य विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा।
मैनिफेस्टो को थ्री भाग में डिवाइड किया हूँ। पहला जो पांच हम लोग रखेगा ये पांच प्राण है, फिर 25 बिंदु हम आप लोगों का सामने लेके आएगा। झारखंड का 25 साल हुए है, 25 तो मुद्दा झारखंड का विकास के लिए करना चाहूंगा। फिर फाइनल मैनिफेस्टो आएगा, जो मैनिफेस्टो में 150 बिंदु रहेगा, किस लिए? भगवान बिरसा मुंडा जी का भी 150 जयंती है।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में घुसपैठ के प्रयास को विफल करते हुए सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया। श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि घुसपैठ की कोशिश के बारे में खुफिया जानकारी मिलने पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल कुपवाड़ा के गूगलधर इलाके में संयुक्त अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए। अंतिम समाचार मिलने तक इलाके में तलाशी अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से माओवादियों के तीन और शव बरामद किए हैं। कल अबुजमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की संख्या 31 हो गई है। नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर नेंदूर थुलथुली के जंगल में ये मुठभेड़ कल उस समय हुई जब इस स्थान पर माओवादियों के होने की जानकारी मिलने पर जिला आरक्षी गार्ड और विशेष कार्यबल की संयुक्त टीम तलाश अभियान चला रही थी। क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य बलों ने यमन में विद्रोही गुट हौजी के नियंत्रण वाले 12 से अधिक ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ईरान समर्थित इस विद्रोही गुट की प्रमुख हथियार प्रणाली, सैन्य ठिकानों और अन्य ढांचों को निशाना बनाकर ये हमले किए गए। ये सैन्य कार्रवाई इस क्षेत्र में ईरान के बढ़ते प्रभाव से अमरीका और ब्रिटेन में उपजी चिंताओं के बाद की गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं वैष्णवी।
महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप बी में आज शाम 7:30 बजे से इंग्लैंड का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दोनों मैच शारजाह में खेले जाएंगे। कल न्यूजीलैंड से हारने के बावजूद भारत की सेमीफाइनल की राह अब भी खुली है। भारत कल पाकिस्तान का सामना करेगा, उसके बाद 9 अक्टूबर को वह श्रीलंका और 13 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा। भारत को ये तीनों मैच जीतने होंगे। वहीं टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और क्रोशिया के उनके जोड़ीदार इवान डोडिक एटीपी शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। 5वीं वरीयता प्राप्त बोपन्ना और डोडिक की जोड़ी ने कल स्पेन के पाब्लो कैरेनो बूस्टा और पेड्रो मार्टिनस को 6-4, 6-3 से पराजित किया। इस वर्ष जोड़ीदार के रूप में ये उनकी पहली जीत है। सुमित नागल और रामकुमार रामनाथन के पहले दौर में ही बाहर होने से भारत के सिंगल्स में चुनौती समाप्त हो गई है। रामकुमार ने क्वालिफाइंग राउंड से मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई थी, जबकि नागल को सीधे प्रवेश मिला था।
कुछ और खेल खबरें। पेरू में ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की निशानेबाज दिव्यांशी ने महिलाओं की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में अपना दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। दिव्यांशी ने 6 में से 564 अंक प्राप्त किए, जबकि मानवी जैन ने 557 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों की जूनियर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में सूरज शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में वो पहले ही 4 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। मुकेश नीलावली ने कांस्य पदक जीता। इस बीच उभरती भारतीय तीरंदाज वैष्णवी पवार ने ताइपे शहर में एशिया युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व अंडर 18 महिला टीम में रजत पदक हासिल किया। वैष्णवी ने प्रत्येक राउंड में 3 सदस्यीय भारतीय टीम के लिए पहला शॉट लिया, जिसमें प्रांजल थोलिया और जन्नत भी शामिल थीं, और उन्होंने स्थिति को संभाला। शूट ऑफ में सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को हराया। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर और दक्षिणी भागों में 2-3 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा हो सकती है। रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में अगले 2-3 दिन में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ और भागों से दक्षिणी पश्चिम मानसून चला गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त भी जारी की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, भारत एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के साथ अपने आपसी संबंधों के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं करेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दोपहर 1 बजे तक 36.69% मतदान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया। अमरीका और ब्रिटिश सैन्य बलों ने यमन में 1 दर्जन से अधिक हौजी के नियंत्रण वाले ठिकानों पर समन्वित हमले किए। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शारजाह में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से और इंग्लैंड का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।